नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपको बहुत स्वागत है।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
सबसे पहले ये नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुरुआती एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। माया राजेश्वरन रेवती ने ITF जूनियर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष हॉकी इंडिया लीग में इस समय शिराची राड़ बंगाल टाइगर्स और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच मुकाबला जारी। शुरुआत क्रिकेट से। महिला क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में आज राजकोट में आयरलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने यह मैच 34 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट खोकर 241 रन बनाकर जीत लिया। भारत की ओर से प्रतिका रावल ने सर्वाधिक 89 रन बनाए, जबकि तेजल हस्पनीस 53 रन बनाकर नाबाद रहीं। आयरलैंड की ओर से एमी मैगुरे ने 3 विकेट हासिल किए। श्रृंखला का दूसरा मैच रविवार को और तीसरा मैच इस महीने की 15 तारीख को इसी मैदान पर खेला जाएगा। मोना, इसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक शानदार शुरुआत कहा जा सकता है। क्या शानदार जीत दर्ज की है अपने पहले ही मैच में।
जी बिल्कुल, और लेकिन यहाँ गौरतलब ये भी है कि आयरलैंड की टीम जो है वो अब तक भारत और आयरलैंड के बीच 12 मुकाबले हुए, एक भी नहीं जीत पाई, और बिल्कुल नई टीम है, नए नए जो कहते हैं ना शुरुआती कदम रख रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। भारत के खिलाफ शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन रहा बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में टिक नहीं सके भारत के सामने, और वाकई में भारत की एक अच्छी सत्र की अच्छी शुरुआत कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में हम क्लीन स्वीप करा के लौटे थे, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला और जीते,
और क्या शानदार जीते। जहां तक T20 का प्रश्न है या फिर ODI का प्रश्न है,
जी दोनों श्रृंखलाएं हमने जीती, एक में क्लीन स्वीप किया, एक 2-1 से जीती, और उसी लय को बरकरार रखा है। और गौरतलब बात यह कि आप अगर टीम शीट देखें, काफी सारे बदलाव इस टीम में है। नियमित कप्तान जो खराब फॉर्म से भी जूझ रही थी हरमनप्रीत कौर, वो इस टीम में नहीं है। स्मृति मानधना कप्तानी कर रही है उनकी गैर मौजूदगी में, और पिछले कुछ अरसे से भारत की सबसे सफल तेज गेंदबाज रही रेणुका ठाकुर, वो नहीं खेल रही हैं।
और तो एक सवाल मेरा, मैं बीच में लेना चाहता हूं, आपने बात की शानदार जीत की कि T20 में हमने वेस्ट इंडीज को धमाकेदार तरीके से हरा कर जीता, फिर ODI भी हमने जीती, तो क्या आयरलैंड के साथ इसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है।
जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूं कि जो कुछ चीजें थी जो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई थी, जैसे ओपनिंग पार्टनर स्मृति मंधाना के साथ कौन होगा, जब से शेफाली वर्मा बाहर है, कई आजमाया गया, ऋचा घोष को ऊपर भेजा गया, वो भी कारगर साबित नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रतीका रावल के रूप में एक अच्छा विकल्प भारत को मिल गया है, क्योंकि अपना दूसरी ही श्रृंखला खेल रही है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही इन्होंने पदार्पण किया था, दिल्ली की प्लेयर है, और जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत की पिछले कुछ समय से रही है वो हल होती नजर आ रही है। और आपको ये पता ही है कि विश्व कप होने वाला है भारत में, तो टीम संयोजन जो बनाने की प्रक्रिया है वो चालू है, और उसके लिए भारतीय चयनकर्ताओं को एक अच्छा विकल्प मिल गया है।
प्रतिका रावल शतक से चूकी जरूर, लेकिन शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन उनका साथ तेजल ने भी बखूबी दिया।
बिल्कुल, और तेजल भी कमबैक कर रही है टीम में, काफी समय बाद खेल रही है, और जो भी बदलाव टीम में हुए हैं मुझे लगता है पहले मैच में अभी तक तो ये ठीक नजर आ रहा है। और जहां रेणुका की हम बात कर रहे थे कि एक अनुभवी गेंदबाज नहीं होने पर जिस तरह से टिटास साधु ने ये जिम्मेदारी निभाई है, युवा गेंदबाज है, काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। और प्रतीका का आपने जिक्र किया, तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है प्रतीका, और मैं सुन रही थी उनको, कह रही थी कि साइकोलॉजी पढ़ने से उनको मानसिक रूप से मजबूत रहने में काफी मदद मिली है, और हमने देखा अब तक जितने 3 मैच उन्होंने खेले हैं काफी परिपक्व खिलाड़ी हैं, अनुभव उतना नहीं है, लेकिन खेल जो है वो इसी पर निर्भर करता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, नहीं तो बड़े बड़े सूरमाओं को हमने धराशायी होते हुए देखा है।
लेकिन पत्रिका रावल कूल माइंडेड हैं और बहुत ठंडे दिमाग से खेलते हुए बेहतरीन उन्होंने आज शॉट्स लगाए हैं और अपनी टीम को विजयी द्वार तक उन्होंने पहुंचाया
और एक तरह से बेदाग पारी खेली उन्होंने।
शानदार बल्लेबाजी का नमूना उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया। लेकिन क्या इसका सेहरा आप भारतीय बल्लेबाजी के सर पर बांधेंगी मोना, या फिर आयरलैंड की कमजोर गेंदबाजी को आप इसका श्रेय देंगी?
देखिए दोनों ही हैं, आप भारतीय बल्लेबाजों से भी श्रेय छीन नहीं सकते क्योंकि पिच ऐसी थी जिससे गेंदबाजों को कुछ मदद मिल नहीं रही थी और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच थी। यहाँ पर भारत के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि मुझे लगता है कि आयरलैंड को 200 रन के भीतर रोका जा सकता था, तो वो एक जो बाद में स्मृति ने मैच के बाद बोला भी कि थोड़े रन जो फालतू दे दिए हैं वो उस पर अंकुश लगाना होगा।
आपने पिच का जिक्र किया तो अगले जो दो मैच हैं जो कि आइंदा रविवार को खेला जाना है और तीसरा मैच जो है 15 तारीख को यहाँ पर इसी मैदान पर यानी राजकोट में खेला जाना है, तो क्या पिच का मिजाज यही रहेगा या फिर उसमें कोई तब्दीली आने की संभावना है और इसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा या फिर आयरलैंड को?
देखिए मुझे लगता है कि पिच से आज गेंदबाजों को उतनी मदद मिल नहीं रही थी और स्ट्रोक्स खेलने के लिए काफी आसान पिच थी, तो पिच का स्वभाव इसी मैदान पर होने वाला है तो लगभग यही रहने वाला है और भारतीय टीम को चाहिए कि आज की तुलना में इससे ज्यादा फायदा वो पिच से उठा सके।
आगे बढ़ते हैं। मुंबई क्रिकेट संघ MCA के वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 19 जनवरी को आयोजित एक भव्य समारोह में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा सहित कई महान क्रिकेटर शामिल होंगे। ये समारोह 12 जनवरी से शुरू होगा। इस मौके पर पूर्व कप्तान रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे, दिलीप वेंगसरकर, सूर्य कुमार यादव और डायना इडुलजी के शामिल होने की भी उम्मीद है। MCA 19 जनवरी को एक कॉफी टेबल बुक जारी करेगा और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेगा। एक यादगार क्षण होगा।
बिल्कुल होगा और आप लेगेसी देखिए MCA की, कैसे कैसे खिलाड़ी दिए हैं, सुनील गावस्कर से लेकर सूर्य कुमार यादव तक और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, बहुत लंबी फेहरिस्त है और लीजेंड्स दिए हैं, तो ये बहुत ही यादगार पल होगा MCA के लिए।
और अब बात बैडमिंटन की। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कुआलालंपुर में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने मलेशिया के ओंग यू सिन और TOE को 49 मिनट में 26-24, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने राउंड 16 में मलेशिया की अयूब अजरियन और टैन वी कियोंग की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-15, 21-15 से हराया था। अन्य सभी भारतीय खिलाड़ी अपने अपने मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मोना, अब मलेशिया ओपन में भारत की एकमात्र उम्मीद की किरण चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी पर टिकी है, क्या हम फाइनल या फिर उससे आगे बढ़कर बात करें तो टाइटल तक का सफर तय कर सकेंगे?
देखिए 2023 और 24 में जिस तरह चिराग और सात्विक का प्रदर्शन रहा है, कई टूर्नामेंट उन्होंने जीते और ये सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जिसको सुपर 1000 कैटेगरी का टूर्नामेंट कहा जाता है वो है, और पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से पदक से चूकने का जो दुख था, काफी समय तक वो उस दुख से उबरने में उनको टाइम लगा और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे लय पकड़ने लगे हैं और सच को स्वीकार करके अगले ओलंपिक चक्र की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी और मुझे लगता है कि एक खिताब अगर यहाँ पर आता है उनके झोली में तो उनका जो मनोबल है वो पहले की तरह, पेरिस ओलंपिक से पहले जिस तरह से वो फॉर्म में थे वो फॉर्म में फिर नजर आएंगे।
यानी जो विजयी क्रम है वो 2024 के बाद 2025 में भी जारी रहने की संभावना है पूरी पूरी?
बिल्कुल संभावना है और हमें उम्मीद है उनसे कि वो बैडमिंटन जिस तरह बहुत ही तेजी से भारत की पदक उम्मीद के रूप में उभरा था ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, वो उस सिलसिले को बरकरार रखेंगे।
लेकिन सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों को क्या हो रहा है मोना, ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है। हमारे इतने अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन ऐन वक्त पर हम क्यों लक्ष्य से भटक जाते हैं?
देखिए लक्ष्य से भटकते हैं और वाकई में आपने ठीक ही कहा कि जिस तरह से वो जो मैं बार बार कह रही हूँ पेरिस ओलंपिक की जो निराशा है, चाहे वो लक्ष्य सेन हो चाहे वो PV सिंधु हो, पूरे 4 साल आप तैयारी करते हैं टूर्नामेंट के लिए और पदक के एकदम करीब आकर लक्ष्य सेन की अगर हम बात करें चूक जाना, तो उबरने में समय लगता है। हमें दर्शकों को ही उससे उबरने में काफी समय लगा कि इतने पास आकर एक श्योर शॉट गोल्ड जो हमें नजर आ रहा था उससे निकल गया। लेकिन ये सब महान खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, खुद को साबित कर चुके हैं जूनियर स्तर पर, सीनियर स्तर पर। तो मुझे लगता है एक फेस है, खराब फेस है उस, वो निकलेगा और पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी हमारे टीम, हमारे जो बैडमिंटन खिलाड़ी है वो जीत की राह पर लौटेंगे।
और अब बात टेनिस की। भारत की माया राजेश्वरन रेवती ने शानदार जीत दर्ज करके ITF जूनियर 300 टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि शीर्ष वरीयता प्राप्त सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में हार गए। सेंथिल को सेमीफाइनल में कोरिया के चौथी वरीयता प्राप्त डोंगयान हवांग ने 6-4 6-1 से मात दी। हवांग का सामना अब भारतीय मूल के अमेरिकी रोशन संतोष से होगा, जिन्होंने हियोन सियोग सीओ को 6-4 6-0 से हराया। 15 वर्ष की माया ने सेमीफाइनल में फ्रांस की एलिजा इनिसान को 6-4 6-7 6-2 से हराया। अब फाइनल में उनका सामना एकातेरिना से होगा। आगे बढ़ते हैं, टेनिस की ही बात जारी रखते हैं। भारत के यूकी भांबरी और फ्रांस के उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी आज ऑकलैंड में ASB क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी से 6-3 1-6 5-10 से हार गए। कल क्वार्टर फाइनल मैच में उन्होंने जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल की ब्रिटिश जोड़ी को 3-6 6-4 12-10 से हराया था। तो कितना नुकसान आप मानेंगी, यूकी भांबरी के रूप में हमने टेनिस में एक अच्छा मौका खोया है, जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, ASB क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट का।
जी, यूकी का अगर हम कैरियर ग्राफ देखें तो बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। जितनी शिद्दत से वो उभरे थे उसके बाद उस लय को कायम नहीं रख पाए और अभी एक तरह से देखा जाए तो कमबैक की प्रोसेस में हैं और क्वार्टर फाइनल नॉकआउट इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो वही लगता है कहीं ना कहीं कोई जो मेंटल ब्लॉक है उससे उनको निकलना होगा अगर टूर्नामेंट जीतने हैं तो।
और अब हॉकी की बात करेंगे। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज ओडिशा के राउरकेला में इस समय फ्राची राड़ बंगाल टाइगर्स और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच मैच खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक तमिलनाडु ड्रैगन्स ने एक गोल से बढ़त प्राप्त कर ली है। कल वेदांता कलिंगा लांसर्स ने टीम गुनासिका को 2-1 से हराया था। एंटनी किना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस जीत के साथ कलिंगा लांसर्स की टीम 7 अंक हासिल करते हुए अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि टीम गुनासिका 4 अंक के साथ 7वें स्थान पर पहुंची है। और नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, भाला फेंक प्रतियोगिता के हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी, पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी करार दिया है। पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने कैलिफोर्निया स्थित पत्रिका की 2024 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने ग्रेनेडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ा। मोना प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन है ये ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, और इसने भारत के नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट घोषित किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है जहां तक भारतीय खिलाड़ी का प्रश्न है या भारतीय खेलों का प्रश्न है।
देखिए, नीरज चोपड़ा अब ऐसे लेजेंड हो गए हैं कि जब भी वो ट्रैक पर फील्ड पर कदम रखते हैं कोई ना कोई नया रिकॉर्ड उनके नाम होता है। और निरंतरता जिसकी हम बात करते हैं, प्रदर्शन में निरंतरता, आप देखिए चाहे विश्व चैंपियनशिप हो
जी,
ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या डायमंड लीग हो, इतना प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, लगातार हर बार पदक उन्होंने भारत की झोली में डाला है। और मुझे लगता है इस निरंतरता का ही उन्हें पुरस्कार मिला है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन निरंतरता जो है वो
कहीं
नीरज के प्रदर्शन में नजर आती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। खिताब के दावेदार ओडिशा FC और गोकुलम केरला ने आज कोझिकोड में इंडियन वुमेन्स फुटबॉल लीग में अपना अभियान 1-1 से ड्रॉ खेलकर शुरू किया। मैच के दोनों गेल दूसरे हाफ में हुए। गत चैंपियन गोकुलम केरला ने 61वें मिनट में लिंडा कोम सर्टो की बदौलत बढ़त हासिल की, लेकिन पिछले चरण की उपविजेता ओडिशा FC ने 87वें मिनट में हकोम शिल्की देवी के गोल से स्कोर बराबर किया, जो अंत तक बरकरार रहा। और श्रोताओं, आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।